नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति के लिए एक मजबूत और सार्वभौमिक नियम होना चाहिए। नई दिल्ली में भारत अरब विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक में डॉ. जयशंकर ने बताया कि आतंकवाद के सभी रूपों से भारत और अरब देशों को समान रूप से खतरा है।
क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म,
सीमा पार आतंकवाद किसी भी रूप में स्वीकार नहीं है, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और कूटनीति के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। आतंकवाद से प्रभावित देशों को आत्मरक्षा का अधिकार है। इस वैश्विक अभिशाप से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना आवश्यक है। आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर एक अटल कानून होना चाहिए।
अनकॉम्प्रोमाइजिंग यूनिवर्सल नॉर्म।
डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और अरब लीग के सभी देशों के बीच मजबूत ऐतिहासिक साझेदारी है। उन्होंने कहा कि यह बैठक ऐसे समय पर हो रही है जब वैश्विक व्यवस्था में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं और राजनीति, अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी तथा जनसांख्यिकी जैसे कारक अहम भूमिका निभा रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरब देशों के विदेश मंत्रियों, अरब लीग के महासचिव और अरब देशों के प्रतिनिधिमंडलों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने भारत और अरब देशों के लोगों के बीच गहरे और ऐतिहासिक संबंधों पर बल दिया। श्री मोदी ने व्यापार और निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और अन्य जरूरी क्षेत्रों में सहयोग को और प्रगाढ़ करने की भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री ने फलस्तीन के लोगों के प्रति भारत का निरंतर समर्थन भी दोहराया और गजा शांति योजना सहित शांति प्रयासों का स्वागत किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस पर समाज को बांटने और राज्य को कमजोर करने का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल के बागडोगरा में एक रैली में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने समुदायों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करके बंगाल की सामाजिक एकता को नुकसान पहुंचाया है। इससे पहले उत्तर 24 परगना के बैरकपुर में श्री शाह ने कहा कि वंदे मातरम का विरोध बंगाल की अस्मिता का विरोध है।
वंदे मातरम के 150 साल समग्र भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वंदे मातरम भारत माता की प्रशंसा में वर्णित किया हुआ एक राष्ट्र माता को भारत माता की प्रार्थना है। मगर दुर्भाग्य की बात है कि जब वंदे मातरम की चर्चा संसद में हो रही थी, तृणमूल कांग्रेस वाले इसका विरोध कर रहे थे।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन कल लोकसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए केंद्रीय बजट पेश करेंगी। लोकसभा में बजट पेश होने के बाद बजट की प्रति राज्यसभा में पेश की जाएगी। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का तीसरा बजट होगा। बजट तैयार करने से पहले वित्त मंत्री ने विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श बैठकें की। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कृषि और ग्रामीण विकास से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर व्यापक बजट पूर्व परामर्श बैठकें की और वित्त मंत्री को सुझावों की संकलित रिपोर्ट सौंपी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते से यूरोपीय संघ को भारत का निर्यात 5 वर्षों में दोगुना हो सकता है। उन्होंने विभिन्न साक्षात्कारों में ये बात कही। श्री गोयल ने बताया कि यह व्यापार समझौता भारत को कई तरह से लाभ पहुंचाएगा। राज्यसभा सांसद सुनीत्रा पवार ने आज महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 62 वर्षीय सुनीत्रा राज्य की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और उनके पति अजित पवार का इस सप्ताह की शुरुआत में एक विमान दुर्घटना में दुखद निधन हो गया था। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उप मुख्यमंत्री बनने पर सुनीत्रा पवार को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि सुनीत्रा पवार राज्य के लोगों के कल्याण के लिए निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य करेंगी और दिवंगत अजित पवार के सपनों को साकार करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुरु रविदास की जयंती की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। थाईलैंड मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में देविका सिहाग ने फाइनल में जगह बनाई। सेमीफाइनल मुकाबले में देविका ने हुआंग यू सुन को सीधे गेम से हराया। फाइनल में देविका का सामना मलेशिया की गोहजिन वेई से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।